डैनियल की पुस्तक संख्या 19। दानियल की पुस्तक में घंटा शब्द का भविष्य सूचक महत्व।
आवर शब्द जो पुराने नियम में केवल दानियल की पुस्तक में मिलता है, हमेशा किसी न किसी प्रकार के न्याय से जुड़ा होता है। तीसरे अध्याय में यह रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जोर शद्रक, मेशक और अबेदनगो द्वारा प्रदर्शित ध्वज पर है। चौथे अध्याय में ये 1799 में पहले स्वर्गदूत के संदेश की चेतावनी के आगमन का प्रतिनिधित्व करता है। चौथे अध्याय में जब इसका दूसरी बार उपयोग किया गया, तब ये 22 अक्टूबर 1844 को अन्वेषण न्याय के आरंभ का प्रतिनिधित्व करता है। चौथे अध्याय में शब्द घड़ी के दोनों प्रयोग 1799 में 1844 तक पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इतिहास प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 की 7 गर्जनाओं का इतिहास है। चौथे अध्याय में शब्द घड़ी के दो बार प्रयोग द्वारा 7 गर्जनाओं का प्रतिनिधित्व किया गया है और इस प्रकार 1999 में से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास का भी प्रतिनिधित्व होता है। अध्याय 5 में आवर शब्द रविवार के कानून का भी प्रतिनिधित्व करता है, पर वहां जोर बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत पर है, जैसा कि बाइबल की भविष्यवाणी के प्रथम राज्य बाबुल के अंत द्वारा प्रतिरूपित है। अध्याय 3 में जोर भट्टी में ध्वज पर था, पर अध्याय 5 में जोर बेलशज्जर के भाग्य और उसके विशेष न्याय पर है। यद्यपि अंततः दानियेल कहानी में आता है और ध्वज का प्रतीक बनता है। रविवार के कानून पर नबूकदनेस्सर के समर्पण और बेलशज्जर की मृत्यु का प्रतिनिधित्व होता है। अध्याय 4 में न्याय के उद्घाटन के रूप में दर्शाई गई घड़ी 22 अक्टूबर 1844 को अन्वेषणात्मक न्याय के उद्घाटन को इंगित करती है और यह रविवार के कानून पर कार्यान्वयनात्मक न्याय के उद्घाटन को भी इंगित करती है। चाहे 22 अक्टूबर 1844 को स्वर्गीय पवित्र स्थान में न्याय की पुस्तकों का उद्घाटन हो या रविवार के कानून पर आरंभ होने वाले कार्यान्वयनात्मक न्याय में उद्धार को अस्वीकार करने वालों पर आने वाले परमेश्वर के न्याय का प्रारंभ, इनमें से किसी भी निकटवर्ती न्याय के लिए दी गई चेतावनी दानियेल अध्याय 4 में घड़ी शब्द के पहले प्रयोग द्वारा दर्शाई गई है और इन दोनों प्रकार के न्यायों में से किसी के वास्तविक प्रारंभ को अध्याय 4 में घड़ी शब्द के दूसरी बार प्रयोग द्वारा दर्शाया गया है। दानियेल द्वारा प्रयुक्त आवर शब्द का व्याकरणिक वर्गीकरण यह है कि वो अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द वो होता है जिसके कई परिभाषाएं होती हैं, जिन्हें एक ही शीर्षक के अंतर्गत समेटा जा सकता है। दानियेल आवर शब्द का 5 बार उपयोग करते हैं। 5 बार ये न्याय का ही संकेत देता है, पर प्रत्येक बार वो या तो परमेश्वर के दंडात्मक न्याय, जिसे उनका कार्यकारी न्याय भी कहा जाता है, के या परमेश्वर के अनुसंधानात्मक न्याय के अलग अलग पहलुओं को संबोधित करता है, जहां वो ये निर्धारित कर रहे होते हैं कि कौन उद्धार पाएगा और कौन नहीं। चाहे वो 22 अक्टूबर 1854 को प्रारंभ हुआ अनुसंधानात्मक न्याय हो या निकट आने वाले रविवार कानून पर शुरू होने वाला कार्यकारी न्याय, दोनों न्याय अपनी प्रकृति में प्रगतिशील है। परमेश्वर का दंडात्मक या कार्यकारी न्याय रविवार कानून से शुरू होता है और क्रमशः तीव्र होता जाता है, अंततः मानव अनुग्रह काल के समापन और 7 अंतिम विपत्तियों तक पहुंचता है। दानियेल अध्याय 5 घड़ी शब्द का प्रयोग परमेश्वर के कार्यकारी न्याय को चित्रित करने के लिए करता है, जिसका उदाहरण बेलशज्जर की मृत्यु और उसके द्वारा शासित राष्ट्र के अंत से मिलता है।
उसी घड़ी किसी मनुष्य के हाथ की उंगलियां प्रकट हुईं और वे राजा के महल की दीवार के पलस्तर पर दीवट के सामने लिखने लगी, और राजा ने उस हाथ का वो भाग देखा जो लिख रहा था। दानियेल 5:5।
दंडात्मक न्याय की शुरुआत रविवार के कानून से होती है, जिसका प्रतीक नबूकदनेस्सर द्वारा स्वर्ण प्रतिमा का समर्पण भी है, लेकिन वो घड़ी अधिकतर उस संकट में परमेश्वर के लोगों की मुक्ति से संबंधित है जो रविवार के कानून से उत्पन्न होता है। टायर की वेश्या का दंडात्मक न्याय और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी रविवार के कानून से शुरू होता है। यही वो घड़ी है जो दानियेल की पुस्तक में न्याय का नाक प्रतीक है।
और मैंने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी जो कहती थी, मेरे लोगों, उससे बाहर निकल आओ ताकि तुम उसके पापों के सहभागी ना बनो और उसकी विपत्तियों में से कुछ भी तुम पर ना आए, क्योंकि उसके पाप आकाश तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसकी अधर्मताओं को स्मरण किया है। जिस प्रकार उसने तुम्हारे साथ किया, उसी प्रकार तुम उसके साथ करो। उसके कामों के अनुसार उसे दुगना दो। जिस प्याले को उसने भरा है, उसी में उसे दुगना भर कर दो। जितना उसने अपने आप को महिमा दी और ऐश किया, उतना ही उसे पीड़ा और शोक दो। क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं तो रानी होकर बैठी हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ और मुझे शोक कभी न देखना पड़ेगा। इसलिए उसकी विपत्तियाँ एक ही दिन में आ पड़ेंगी, मृत्यु, शोक और अकाल, और वो पूरी तरह आग से जला दी जाएगी, क्योंकि जो प्रभु परमेश्वर उसका न्याय करता है वो शक्तिशाली है, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और ऐश किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए विलाप करेंगे और शोक मनाएंगे, उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय वो बड़ी नगरी बाबुल, वो शक्तिशाली नगरी, क्योंकि एक ही घड़ी में तेरा न्याय आ पहुंचा। प्रकाशित वाक्य 18 तक प्यास।
संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार का कानून, जो कार्यान्वयात्मक न्याय की शुरुआत है और जो प्रगतिशील भी है, उस घड़ी में आरंभ होता है जब परमेश्वर की वे संतानें जो अभी भी बाबुल में हैं, ध्वज द्वारा बाहर बुलाई जाती है। ये वही घड़ी है जब उस महान नगर बाबुल पर न्याय आता है। उसका न्याय, जिसका प्रतिनिधित्व घड़ी शब्द करता है, उस अवधि को समेटता है जब परमेश्वर का अन्य झुंड बाबुल से बाहर बुलाया जाता है।
और उस दिन यिशै की जड़ होगी जो लोगों के लिए ध्वज बने के समान खड़ी होगी, उसकी ओर अन्य जातियां आएंगी और उसका विश्राम महिमामय होगा। और उस दिन ऐसा होगा कि प्रभु दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाकर अपनी प्रजा के शेष लोगों को, जो अश्शूर से और मिस्र से और पठरोस से और कूश से और एलाम से और शिनार से और हामात से और समुद्र के द्वीपों से बचे होंगे, छुड़ाएगा, और वो जातियां के लिए ध्वज खड़ा करेगा और इसराइल के निकाले हुओं को इकट्ठा करेगा और यहूदा के तितर बितर लोगों को पृथ्वी के चारों कोनों से एकत्र करेगा। यशाया 11:10-12।
प्रभु ने 1834 में पहले स्वर्गदूत के आंदोलन में लोगों को बाबेल से बाहर बुलाया, और उस इतिहास के दूसरे स्वर्गदूत का संदेश अंतिम दिनों में दोहराया जाएगा, जब प्रभु अपनी प्रजा के अवशेष को फिर दूसरी बार बचा निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। जिस प्रजा के अवशेष को वो फिर बुला रहा है, वे ध्वज नहीं है, क्योंकि ध्वज तो यिशै की जड़ है जो ध्वज के रूप में खड़ी होती है, जिसे अन्य जातियां ढूंढती हैं। दूसरी बार परमेश्वर जातियों को बाबेल से बाहर बुलाएगा। वो ऐसा करेगा पहले इसराइल के निर्वासितों को एकत्र करके, जो यहूदा के तितर बितर किए हुए हैं और जो पृथ्वी के चारों कोनों से आते हैं। जब वे प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 की उस सड़क पर 3.5 दिन तक मृत पड़े रहने के बाद एकत्र किए जाएंगे, जो यहेजकेल की मृत और सूखी हड्डियों की घाटी से होकर गुजरती है, शक्तिशाली नगर बाबुल के लिए जब दंडात्मक न्याय आरंभ होने की घड़ी आती है, वही घड़ी प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के महान भूकंप की है। परमेश्वर का दंडात्मक न्याय उसी घड़ी में आरंभ होता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में भूकंप की घड़ी में 7,000 लोग मारे जाते हैं। वे 7,000 नबूकदनेस्सर के सबसे पराक्रमी पुरुषों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस भट्टी में डालते समय मर गए थे, जिसे सामान्य सामसात गुना अधिक गर्म किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति में वे 7,000 फ्रांस के राजघराने या उसके पराक्रमी पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते थे। केवल अध्याय 5 में बेल शज्जर भी नहीं मारा गया, बल्कि उसकी सेना भी नष्ट कर दी गई थी। रविवार के कानून की वो घड़ी उस उत्पीड़न की शुरुआत करती है, जिसका प्रतिनिधित्व परमेश्वर की प्रजा को भट्टी में डाले जाने से होता है। पर ये महान नगर बाबुल पर परमेश्वर के दंडात्मक न्याय के आरंभ को भी चिन्हित करती है। ये प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के महान भूकंप की वही घड़ी भी है, जब वे पहले से मृत हड्डियां,
जिन्हें अथाह कुंड से निकले पशु ने सड़क पर मार डाला, एक ध्वज के रूप में स्वर्ग में उठा ली जाती हैं। वहीं वही घड़ी भी है जब तीसरी हाय, जो कि सातवीं तुरही भी है, फूंकी जाती है। सातवीं तुरही ही तीसरी हाय है, और उस अंतिम हाय की तुरही का उद्देश्य केवल रविवार की उपासना को लागू कराने वालों पर न्याय लाना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रों को क्रोधित करना भी है। तीसरी हाय, सातवीं तुरही और राष्ट्रों को क्रोधित करना, ये सब प्रतीक इस्लाम की भविष्यद्वाणीगत भूमिका को संबोधित करते हैं, और ये उस महान भूकंप की घड़ी में रखे गए हैं।
और उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ी आवाज सुनी जो उनसे कहती थी, यहां ऊपर आओ। और वे बादल में होकर स्वर्ग में चढ़ गए, और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा, और उसी घड़ी वहां बड़ा भूकंप आया, और नगर का दसवां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप में 7,000 मनुष्य मारे गए, और जो बचे थे वे भयभीत हुए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी हाय बीत गई, देखो तीसरी हाय शीघ्र आती है। और सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और स्वर्ग में बड़ी आवाजें हुईं जो कहती थीं, इस संसार के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य हो गए हैं, और वो युगानुयुग राज्य करेगा। और वे 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने आसनों पर बैठे थे, अपने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर की आराधना की और कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था और जो आने वाला है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने अपनी बड़ी शक्ति संभाल ली है और राज्य किया है। और जातियां क्रोधित हुईं और तेरा क्रोध आ पहुंचा, और समय आ गया कि मरे हुए का न्याय किया जाए, और तू अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को और पवित्र लोगों को और जो छोटे बड़े तेरे नाम से डरते हैं प्रतिफल दे, और जो पृथ्वी को नाश करते हैं अकिनाश करे। प्रकाशित वाक्य जियरा 12 तख्त।
यहिज्केल की मृत हड्डियां एक बादल में स्वर्ग तक ऊपर उठी हैं, और उनके शत्रु उन्हें उस घड़ी देखते हैं जब नबुकदनेस्सर का संगीत बजना शुरू होता है, तिरुस की व्यभिचारिणी गाना शुरू करती है, और धर्मत्यागी इज़राइल नाचता शुरू करता है। धर्मत्यागी इज़राइल झूठे भविष्यद्वक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। राजा नबुकदनेस्सर अजगर है और तिरुस की व्यभिचारिणी पशु है। नृत्य का चित्रण इलिया की कहानी में बाल के भविष्यद्वक्ताओं और उपवन के भविष्यद्वक्ताओं द्वारा किया गया है। ये हेरोदिया की पुत्री सलोमी के नृत्य द्वारा भी दिखाया गया था। बाल झूठा पुरुष देवता है और उपवन के भविष्यद्वक्ताओं की देवी अष्टारोत एक स्त्री देवी है। मिलकर वे कलीसिया स्त्री और राज्य पुरुष के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिलकर वे संयुक्त राज्य अमेरिका के झूठे भविष्यद्वक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सलोमी ये दर्शाती है कि झूठा भविष्यद्वक्ता रोम की पुत्री है, जिसकी छवि संयुक्त राज्य अमेरिका में कलीसिया और राज्य के संयोजन के रूप में है।
तब उसी समय कुछ कसदियों ने पास आकर यहूदियों पर दोष लगाया। उन्होंने राजा नबुकदनेस्सर से कहा, हे राजा अनंत काल तक जीवित रहे, तू हे राजा ने ये आज्ञा दी है कि जो कोई नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सैकबट, सॉल्ट्री और डल्सिमर और सब प्रकार के संगीत की ध्वनि सुने, वो झुककर उस सोने की मूर्ति की पूजा करे, और जो कोई न झुके और न पूजा करे उसे जलती हुई धधकती भट्टी के बीच में डाल दिया जाए। बाबुल प्रांत के कार्यों पर जिन यहूदियों को तूने नियुक्त किया है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन लोगों ने हे राजा तेरी परवाह नहीं की। वे न तेरे देवताओं की सेवा करते हैं और न उस सोने की मूर्ति की पूजा करते हैं जिसे तूने खड़ा किया है। दानियल 3:8-12।
उसी घड़ी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के शत्रुओं ने देखा कि उन्होंने पशु का चिन्ह लेने से इनकार कर दिया, और तब उन्होंने राजा से निर्धारित दंडादेश लागू करने की याचना की। उसी घड़ी में अर्थात रविवार के कानून के समय, जो पृथ्वी के पशु का सामना कराने वाला कंपन भूकंप है, नबुकदनेस्सर का क्रोध और उग्रता प्रकट होती है।
तब नबुकदनेस्सर ने क्रोध और प्रकोप से भरकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलाने की आज्ञा दी। तब वे उन पुरुषों को राजा के सामने ले आए। दानियल 3:13।
परमेश्वर के दो गवाहों शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विरुद्ध जो उत्पीड़न किया,
वो तब होता है जब वे झुकने से इनकार करते हैं, या जैसा कि प्रकाशित वाक्य 11 बताता है, वे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं।
और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का आत्मा उनमें प्रवेश कर गया और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, और जिन्होंने उन्हें देखा उन पर बड़ा भय छा गया, और उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ी आवाज सुनी कि उनसे कहा गया, इधर ऊपर आओ। तब वे मेघ में स्वर्ग पर चढ़ गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा। प्रकाशित वाक्य 11:8-12।
झुकने से इनकार करते हुए वे यहेजकेल की शक्तिशाली सेना के समान अपने पैरों पर खड़े होते हैं। वे तब खड़े रहते हैं जब वे मुहर लगाने वाला संदेश प्राप्त करते हैं और फिर उसका प्रचार करते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कलीसिया और राज्य के संघ के गठन का विरोध करता है, शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के बारे में चेतावनी देता है और ये बताता है कि परमेश्वर का प्रतिशोधी न्याय तीसरे हायत से संबद्ध इस्लाम के द्वारा शीघ्र ही पूरा किया जाने वाला है। मध्य रात्रि की पुकार का संदेश उस भेद द्वारा दर्शाया गया है जो तीसरे आनर में उसे प्रकट किया गया था, और जब परमेश्वर के अंतिम समय के लोग उस सत्य में स्थिर हो जाते हैं तो वे आसन्न भूकंप से ना तो हिल सकते हैं और न ही हिलाए जाएंगे।
बैरल क्रिक में काम भी इसी ढंग का है। आरोग्यशाला के नेताओं ने अविश्वासियों के साथ घुल मिलकर उन्हें कमोबेश अपनी परिषदों में स्थान दिया है, पर ये आंखें मूंदकर काम करने जैसा है। उनमें ये विवेक नहीं है कि वे देख सकें कि किसी भी समय हमारे ऊपर क्या टूट पड़ने वाला है। हताशा, युद्ध और रक्तपात की एक भावना है, और वो भावना समय के बिल्कुल अंत तक बढ़ती जाएगी। ज्यों ही परमेश्वर के लोगों के ललाटों पर मुहर कर दी जाएगी, ये कोई दिखाई देने वाली मुहर या चिन्ह नहीं है, बल्कि सत्य में ऐसा स्थिर हो जाना है, बौद्धिक और आत्मिक दोनों रूपों में, कि उन्हें डोलाया न जा सके। ज्यों ही परमेश्वर के लोग मुहर बंद होकर हिलावट के लिए तैयार हो जाएंगे, वो आ जाएगी। वास्तव में ये पहले ही शुरू हो चुका है। परमेश्वर के न्याय अब भूमि पर है, हमें चेतावनी देने के लिए, ताकि हम जान सकें कि क्या आने वाला है। मैन्युस्क्रिप्ट रेलिजेज खंडस 555।
मुहरबंदी एक ऐसे चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रारंभ में मनुष्यों को दिखाई नहीं देता, परंतु उसके बाद सबको दिखाई देता है। जब परमेश्वर की प्रजा आधी रात की पुकार के संदेश को स्वीकार करती है, जिसका प्रतिनिधित्व उस भेद से किया गया है जो दानियल को दूसरे अध्याय में प्रकट किया गया था, तो वे पशु की छवि के उस भेद को स्वीकार करते हैं जो पशु के चिन्ह तक ले जाता है, जो परमेश्वर का न्याय लेकर आता है, जो इस्लाम के माध्यम से पूरा किया जाता है। ये उस समय घटित होता है जब हताशा, युद्ध और रक्तपात की आत्मा बढ़ रही होती है। वह समय अभी है। ये तब होता है जब एडवेंटवाद के नेता लाओदिकियाई अंधपन के कारण देख नहीं पाते। उस मुहरबंदी की प्रक्रिया के दौरान, जो आधी रात की पुकार पर पूर्ण होती है, बुद्धिमान कुमारियों के माथों पर मुहर अंकित की जाती है, परंतु वो दिखाई नहीं देती। शद्रक, मेशक और अबेदनगो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्य में स्थापित हो चुके हैं, जैसा कि नबूकदनेस्सर के साथ उनके संवाद से प्रदर्शित होता है।
नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, क्या ये सच है हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, कि तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते और उस सोने की प्रतिमा की पूजा नहीं करते जिसे मैंने खड़ा किया है? अब यदि तुम तैयार हो कि जैसे ही तुम नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सैकबट, सारंगी और संतूर तथा सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो गिरकर उस प्रतिमा की आराधना करो जिसे मैंने बनाया है, तो अच्छा, परंतु यदि तुम पूजा न करोगे तो उसी घड़ी तुम्हें धधकती आग की भट्ठी के बीच में डाल दिया जाएगा, और वो कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उत्तर देकर राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में हम तुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझते। यदि ऐसा ही हो तो हमारा परमेश्वर, जिसकी हम सेवा करते हैं, हमें धधकती आग की भट्ठी से छुड़ाने में समर्थ है, और हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा लेगा। परंतु यदि वो ऐसा न करे तो भी हे राजा, ये तुझे जान लेना चाहिए कि हम न तो तेरे देवताओं की सेवा करें और न उस सोने की प्रतिमा की पूजा करेंगे जिसे तूने खड़ा किया है। दानियल 3:14-18।
इसके बाद तीन महापुरुष ईश्वर की वो मुहर प्रकट करेंगे जो देखी जा सकती है। केवल वे ही जिनके भीतर पहले से वो अदृश्य मुहर है, उस समय जब उसे देखा जाना आवश्यक होगा, ईश्वर की मुहर को प्रकट करने में सम्मिलित होंगे।
तब नबुकदने सर क्रोध से भर गया और शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति उसके चेहरे का भाव बदल गया। इसलिए उसने कहा और आज्ञा दी कि भट्ठी को जितना सामान्यतः गर्म की जाती है उससे 7 गुना अधिक गर्म किया जाए। और उसने अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को आज्ञा दी कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर धधकती आग की भट्ठी में डाल दें। तब इन पुरुषों को उनके कुर्तों, पायजामों और टोपियों सहित तथा अन्य वस्त्रों समेत बांधकर धधकती आग की भट्ठी के बीच में फेंक दिया गया। इस कारण, क्योंकि राजा की आज्ञा अत्यंत कड़ी थी और भट्ठी अत्यंत गर्म थी, आग की लपट ने उन पुरुषों को मार डाला जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाकर ले जा रहे थे। और ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए ही धधकती आग की भट्ठी के बीच में गिर पड़े। तब राजा नबूकदनेस्सर चकित हुआ और जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोलकर अपने सलाहकारों से कहा, क्या हमने आग के बीच में 3 बंधे हुए पुरुष नहीं डाले थे? उन्होंने राजा से कहा, हाँ हे राजा। उसने उत्तर दिया, देखो, मैं 4 पुरुषों को देखता हूँ जो बंधनों से मुक्त हैं और आग के बीच में चलते फिरते हैं और उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई है, और चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। दानियल 3:19-25।
वे 2 साक्षी जिनका प्रतिनिधित्व शद्रक, मेशक और अबेदनगो करते हैं, तब एक ध्वज के रूप में ऊंचा उठाए जाएंगे और तब मुहर दिखाई देगी।
पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि वो संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराए। संसार को केवल तब चेताया जा सकता है जब वो सत्य में विश्वास करने वालों को सत्य के द्वारा पवित्र किए हुए देखे, जो उच्च और पवित्र सिद्धांतों पर चलते हैं और ऊंचे उदात्त भाव से उन लोगों के बीच विभाजन रेखा दिखाते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो उन्हें अपने पैरों तले रौंदते हैं। आत्मा का पवित्रीकरण परमेश्वर की मुहर पाए हुए और झूठा विश्राम दिन मानने वालों के बीच का भेद स्पष्ट करता है। जब परीक्षा आएगी तब स्पष्ट रूप से दिखा दिया जाएगा कि पशु का चिन्ह क्या है। वो रविवार का पालन करना है। जो लोग सत्य सुन लेने के बाद भी इस दिन को पवित्र मानते रहते हैं, वे अधर्म के मनुष्य की छाप लिए हुए हैं जिसने समयों और व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयत्न किया। बाइबल ट्रेनिंग स्कूल, 1 दिसंबर 1903।
रविवार का कानून लागू होने पर संयुक्त राज्य अमेरिका अपने भविष्य सूचक कार्य को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर रुख करेगा। वो अपने किए हुए चमत्कारों के द्वारा संसार को धोखा देगी, जैसा कि सालोमी के नृत्य द्वारा दर्शाया गया है। जब वो अपने छल का नृत्य करेगी, तब टायर की वेश्या अपने गीत गाएगी और नबूकदनेस्सर का वाद्य वृंद संगीत बजाएगा। दुनिया को वो गीत स्वीकार कराने और मूर्ति के आगे झुकने के लिए बाध्य करने में संयुक्त राज्य अमेरिका अगुवाई करेगा।
और मैंने पृथ्वी से ऊपर आते हुए एक और पशु को देखा, और उसके 2 सींग थे जैसे मेमने के, और वो अजगर के समान बोलता था। और वो पहले पशु के सामने उसकी सारी शक्ति का प्रयोग करता है और पृथ्वी तथा उसके निवासियों को उस पहले पशु की पूजा करवाता है जिसका घातक घाव चंगा हो गया था। और वो बड़े बड़े चमत्कार करता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग से पृथ्वी पर आग उतार देता है। और उन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें वो उस पशु के सामने करने की शक्ति रखता था, पृथ्वी पर रहने वालों को धोखा देता है और पृथ्वी के निवासियों से कहता है कि वे उस पशु की एक प्रतिमा बनाएं जिसे तलवार से घाव लगा था फिर भी वो जीवित रहा। और उसके पास उस पशु की प्रतिमा में प्राण देने की शक्ति थी, ताकि पशु की प्रतिमा बोल भी सके। और वो ये करा दे कि जितने लोग पशु की प्रतिमा की पूजा न करें वे मार डाले जाएं। और वो सबको, छोटे और बड़े, धनी और निर्धन, स्वतंत्र और दास, उनके दाहिने हाथ में या उनके माथे पर एक चिन्ह लगवा देता है, ताकि कोई मनुष्य खरीद या बेच न सके सिवाय उसके जिसके पास वो चिह्न या उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या हो। यहाँ बुद्धि का काम है। जिसके पास समझ है वो उस पशु की संख्या की गणना करे, क्योंकि वो मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या है 666। प्रकाशित वाक्य 13:11-18।
अंतिम दिनों में मिस्र विश्व का प्रतिनिधित्व करता है जो तब संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित होगा, परंतु एक हाय इस्लाम का प्रतीक उन लोगों संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध घोषित किया गया है जो सहायता के लिए मिस्र की ओर मुड़ते हैं। जब तीन वीर पुरुष भट्टी में फेंक दिए जाते हैं और विश्व के लिए एक निशानी बन जाते हैं, तो वो भट्टी वास्तव में नबूकदनेस्सर की भट्टी नहीं है।
हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को उतर जाते हैं और घोड़ों का सहारा लेते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और खुद सवारों पर क्योंकि वे अत्यंत बलवान हैं, परंतु वे इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, न प्रभु की खोज करते हैं। तो भी वो भी बुद्धिमान है और विपत्ति लाएगा और अपने वचन वापस न लेगा, परंतु कुकर्मियों के घर पर और अधर्म करने वालों की सहायता के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। अब मिस्री मनुष्य हैं, परमेश्वर नहीं, और उनके घोड़े देह हैं, आत्मा नहीं। जब प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा तब सहायक भी गिर पड़ेगा, और जिसकी सहायता की जाती है वो भी गिर जाएगा, और वे सब एक साथ नाश होंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जैसे सिंह और जवान सिंह अपने शिकार पर गरजते हैं, और जब बहुत से चरवाहे उसके विरुद्ध बुलाए जाते हैं तो वो न उनकी आवाज़ से डरता है न उनके शोर से पीछे हटता है, वैसे ही सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत और उसके टीले के लिए लड़ने को उतर आएगा। जैसे उड़ते हुए पक्षी होते हैं वैसे ही सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। रक्षा करते हुए वो उसको छुड़ाएगा और ऊपर से गुजरते हुए वो उसे सुरक्षित रखेगा। उसकी ओर लौट आओ जिसके विरुद्ध इसराइल की संतान ने गहराई से विद्रोह किया, क्योंकि उसी दिन हर एक मनुष्य अपनी चांदी की मूर्तियां और अपनी सोने की मूर्तियां, जिन्हें तुम्हारे अपने हाथों ने तुम्हारे लिए पाप का कारण बनने को बनाया है, फेंक देगा। तब अश्शूरी तलवार से गिरेगा, किसी पराक्रमी की नहीं, और तलवार किसी तुच्छ मनुष्य की नहीं उसे भस्म करेगी, परंतु वो तलवार से भागेगा और उसके जवान लोग परास्त हो जाएंगे, और वो भय के मारे अपने गढ़ की ओर चला जाएगा और उसके हाकिम ध्वज के कारण डरेंगे। यहोवा की ये वाणी है, जिसकी आग सियोन में है और जिसकी भट्टी यरूशलेम में है। यशाया 31:1-9।
यरूशलेम वो भट्टी है जिसकी ओर संसार देखेगा और वे उसमें चार पुरुषों को चलते हुए देखेंगे।
तब नबूकदनेस्सर धधकती आग की भट्टी के मुख के पास आकर बोला और कहा, शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो, बाहर आओ और इधर आओ। तब शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से बाहर आए, और हाकिम राज्यपाल सेनापति और राजा के सलाहकार इकट्ठे होकर इन पुरुषों को देखने लगे कि उनके शरीरों पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उनके सिर का एक भी बाल नहीं झुलसा था, न उनके वस्त्र झुलसे थे और न ही उन पर आग की गंध आई थी। तब नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने अपना स्वर्गदूत भेजकर अपने उन दासों को छुड़ाया जिन्होंने उस पर भरोसा रखा और जिन्होंने राजा के वचन को ठुकरा दिया और अपने शरीर सौंप दिए, ताकि अपने परमेश्वर के सिवाय वे किसी और देवता की सेवा और पूजा न करें। दानियल 3:26-28।
तब नबूकदनेस्सर ने एक और फरमान जारी किया। वो फरमान अंतिम दिनों के अंतिम फरमान का प्रतीक है। वो मृत्यु का फरमान जारी करता है जो स्वर्ग के परमेश्वर को ऊंचा ठहराने के उसके दुर्बल प्रयास में वस्तुतः संसार के अंत में आने वाले मृत्यु फरमान का भविष्यवाणी संबंधी प्रतीक है। संसार के अंत के समय के एक राजा का प्रतिनिधित्व करते हुए नबूकदनेस्सर अजगर के उन 10 राजाओं का प्रतीक है जो रोम की व्यभिचारिणी के साथ व्यभिचार करते हैं। भविष्यवाणी के परिदृश्य में अगला फरमान मृत्यु फरमान है, और यद्यपि नबूकदनेस्सर अपने समय के लिए घोषणा कर रहा है, वो वास्तव में अंतिम दिनों में
त्रिगठबंधन के अंतिम फरमान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो फरमान वही मृत्यु फरमान है जो अनुग्रह का काल समाप्त होने के बाद लागू किया जाएगा, परंतु परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध कभी क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।
इसलिए मैं ये आज्ञा ठहराता हूँ कि जो कोई किसी भी लोग, जाति और भाषा का होकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी अनुचित बोले, वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और उसके घर को कूड़े का ढेर बना दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार छुड़ा सकने वाला और कोई परमेश्वर नहीं है। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उन्नति दी। दानियल 3:29-30।
हमने अब दानियल के पहले तीन अध्यायों का पर्याप्त भाग दर्ज कर दिया है, ताकि हम चौथे और पांचवें अध्यायों पर विचार आरंभ कर सकें, जो दोहराना और विस्तार करना के भविष्यवाणी संबंधी सिद्धांत द्वारा संचालित हैं। दानियल का चौथा अध्याय 77:28 और पृथ्वी के पशु की शुरुआत को चिन्हित करता है, और दानियल का पांचवा अध्याय रविवार के कानून को तथा जब वो अजगर के समान बोलता है तब पृथ्वी के पशु के अंत को चिन्हित करता है। तीन स्वर्गदूतों के संदेशों की संरचना पर आगे निर्माण करने के लिए इन दोनों अध्यायों को पहले तीन अध्यायों के साथ रेखा पर रेखा मिलाया जाना है। इसी कारण हम पहले रेखा पर रेखा के सिद्धांत को सावधानीपूर्वक परिभाषित करेंगे। हम अगले लेख में जारी रखेंगे।
बेलशज्जर को परमेश्वर की इच्छा को जानने और करने के अनेक अवसर दिए गए थे। उसने अपने दादा नबूकदनेस्सर को मनुष्यों के समाज से निकाले जाते देखा था। उसने ये भी देखा था कि जिस बुद्धि पर वो घमंडी सम्राट घमंड करता था, उसे देने वाले ने वही उससे छीन ली। उसने ये भी देखा कि राजा को उसके राज्य से खदेड़ दिया गया और उसे मैदान के पशुओं का साथी बना दिया गया। परंतु मनोरंजन और आत्मगौरव के प्रति बेलशज्जर के प्रेम ने वे शिक्षाएं मिटा दी जिन्हें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए था, और उसने वही पाप किए जिनके कारण नबूकदनेस्सर पर कठोर न्याय आए। उसने उसे अनुग्रह पूर्वक दिए गए अवसरों को व्यर्थ खो दिया। सत्य से परिचित होने के लिए अपने हाथों में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करना उसने उपेक्षित कर दिया। मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसे उस महान परंतु मूर्ख राजा ने उदासीनता से टाल दिया। बाइबल इको 25 अप्रैल 1858।